Lube, the one-stop shop. 519-622-0660 ja quicktrucklube.com. QTL, because we care. Quick Truck Lube.
ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਵੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ।
ਹਾਂਜੀ, ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰਿਜ, ਸਟੋਵ, ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, 3 ਪੀਸ ਕਿਚਨ ਬੰਡਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ, ਐਨਰਜੀ ਸੇਵਰ, ਐਨਰਜੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਟੀਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ, ਸੈਮਸੰਗ, ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ, ਸ਼ਾਰਪ, ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਟੀਵੀ ਵਿਦ ਦ ਲੋਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨ ਦ ਟਾਊਨ, ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਤੇ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ, 801 Bowie Drive West, Brampton, ya call karo 905-450-2828, 905-450-2828.
हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपका मेजबान होस्ट आरजे, जो आप समझे आपका रेडियो शो वीकेंड विद आसिम अली। और पाकिस्तान जिंदाबाद, अभी आपको हमने एक मिली नगमा सुनाया और बहुत ही मजे का ये मिली नगमा था। तो हमारा प्रोग्राम जो होता है वो आपको पता है, जो सुनने वाले हैं हमारे रेगुलर उनको पता है कि ये प्रोग्राम जो है ये पूरे हफ्ते का रिव्यू होता है हमारा। इस प्रोग्राम में पॉलिटिक्स पे होता है और इस हफ्ते भी बहुत ज्यादा चीजें चेंज हो चुकी हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स में। और कल जो है वो ज़िमनी इलेक्शन है, 20 नशिस्तों पर, मतलब 20 सीट्स हैं जिन पे ये इलेक्शन हो रहे हैं। और ये लाहौर और सिंध में एक दो और सब जगह मिला के, तो कल पता चलेगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। जो कि अभी पोजीशन है वो कुछ वाजे नहीं हो रही है। सारी दोनों जो पार्टियां हैं, वो चाहे पीटीआई हो या मुस्लिम लीग नून हो, वो दावा यही कर रहे हैं कि वो एक दूसरे को पछाड़ देंगे, लेकिन कल क्या हो किसे पता। जलसे बहुत किए हैं, इमरान खान साहब ने भी किए हैं और مریم نواز صاحبہ نے بھی بہت جلسے کیے ہیں. اور کچھ ریویو ہے جو ہفتے بھر کا, وہ یہ ہے کہ آج پروگرام میں میں سن رہا تھا کہ مبشر لقمان صاحب نے یہ بولا ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک پلاننگ کے تحت پاکستان میں لایا گیا تھا تاکہ چائنا سے پاکستان کو دور کیا جائے, اور دیکھیں جب عمران خان صاحب اقتدار میں آئے تھے تو چائنا پاکستان سے کتنا دور ہو گیا, تو جتنے پروجیکٹ تھے سب توالت کا شکار ہو گئے تھے. کہاں تک سچ ہے کہاں تک جھوٹے یہ آپ خود فیصلہ کیجئے. دوسرا, آرمی چیف پر جو الزامات کی بوچھار تھی وہ ختم نہیں ہوئی, کیوں نہیں ہوئی پتہ نہیں. بہرحال پاکستان زندہ باد, پاک آرمی زندہ باد, جس کو برا لگتا ہے لگے بھاڑ میں جائے. لیکن آرمی چیف کے بارے میں جو کچھ بھی کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کو, جیسے فواد چودھری صاحب نے کہا کہ منہ کو خون لگ گیا ہے, تو فواد چودھری صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کی ہی پیداوار رہے ہیں اور ان کی گود میں ہی پل کے آگے بڑھے ہیں. جب مشرف صاحب تھے جب بھی وہ ان کے ساتھ کابینہ میں اور وزارت میں تھے, تو اس طرح کے بیانات سے پھر میں کہوں گا سر پلیز گریز کریں, اپنے آپ کو یا اپنی قوم کو یا اپنے ملک کو اس طرح سے سرعام بدنام نہ کریں. جو ہو رہا ہے جیسا ہو رہا ہے اس میں شاید پاکستان کی یا ہمارے لوگوں کی بہتری ہو تو ہونے تو دیجیے. اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہے, اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ الزامات نہیں لگتے, سب ایک دوسرے پہ لگا رہے ہیں, لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ بالکل غلط ہے. چاہے وہ مریم نواز صاحبہ ہوں جو کہ بار بار وہ بشرا بی بی کو لے کر آ رہی ہیں, اور وہ فرح گوگی کا تو میں سمجھتا ہوں, فرح صاحبہ جو فرح خان صاحبہ ان کا, لیکن وہ بشرا بی بی کے بارے میں بات کریں یا عمران خان صاحب ان کی فیملی کے بارے میں, تھوڑا سا اقتدار کے لیے لڑنے کے لیے گراؤنڈ پہ کام کیجئے تاکہ لوگ آپ کو ووٹ دیں, نہ کہ آپ زبانی کلامی فائرنگ کریں ایک دوسرے کے اوپر, ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں کریں, یہ زیادہ برا ہوتا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ہم تخریب کاری ہونے نہیں دیں گے, اور اگر ہوئی تو ہم اسے برداشت نہیں کریں گے. اور الیکشن میں دھاندلی کے بارے میں پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے دھاندلی ہوگی اور یہ کوشش کریں گے, لیکن میرے جوان عمران خان صاحب نے کہا وہ جو اس دھاندلی کو روکیں گے اور دھاندلی ہونے نہیں دیں گے. انہوں نے الیکشن کمیشن پہ بھی وار کیا ہے اور کہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ مل کر اس میں دھاندلی کرے گا, جو کہ ان کے اشارے اور کناروں میں یہ ساری باتیں چل رہی ہیں. سب سے امپورٹنٹ جو میں آج آپ کو تو نیوز ہوگی سب پتہ ہی ہوگا, اور خاص طور پہ وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے چاہنے والے ان کے پاس تو اس سب سے پہلے نیوز پہنچتی ہے کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ ان کا جو یہ تھا کہ غیر ملکی سازش کا جو بیانیہ تھا اس کو کنڈیمڈ کر دیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں متن پورا بھی نہیں بھیجا, نہ وہ ہمیں سائفر دکھایا اور نہ ہی اس میں کوئی سچائی ہے. اس کے باوجود کل عمران خان صاحب اپنے جلسے میں وہی بیانیہ کو دہرائے جا رہے تھے کہ جی سازش سازش اور سازش. اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح سے ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے کہ عدلیہ اور جتنے بھی انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ سازش کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے, جبکہ عمران خان صاحب اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں تو کیوں. اور اس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو قاسم سوری صاحب تھے انہوں نے جو فیصلہ پڑا تھا اس دن جب عدم اعتماد کی تحریک تھی تو وہ آئین کے منافی تھا, انہوں نے آئین کی پامالی اور آئین کو توڑا ہے جس پہ آرٹیکل 6 کی کاروائی ہونی چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ فواد چودھری پہ ہونی چاہیے عمران خان صاحب نے, کیونکہ یہاں ابھی فواد چودھری صاحب نے پڑھ کے سنایا اور ان کے پاس قاسم سوری صاحب کے پاس لکھا ہوا جو تھا فیصلہ انہوں نے فیصلہ سنا دیا, اجلاس کو برخاست کر دیا, اور عمران خان صاحب نے اگلے ہی لمحے اسمبلیاں توڑنے کی بات کر لی اور صدر پاکستان نے اس کو منظور کر کے سائن کر دیا. یہ چاروں چیزیں جو ہوئی ہیں یہ خلاف قانون مطلب آئین کو توڑنے کے مترادف ہوئی ہیں, جس پہ یہ فیصلہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر چاہے حکومت تو ان پہ آرٹیکل 6 لاگو ہو سکتا ہے. اچھا جب سے یہ فیصلہ آیا ہے تو اب یہ ہو گیا کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے جتنے لوگ وہ کہہ رہے ہیں دیکھا عدلیہ تو بگی ہوئی ہے, دیکھا عدلیہ نے تو ایسا فیصلہ کر لیا. لیکن یہی وہ عدلیہ تھی جب پہلے کہتے تھے رات 12 بجے کھل گئی, تو کوئی یہ نہیں سوچتا کہ یہ آئین کی اتنی پامالی اس کو توڑا گیا تو 12 بجے انہیں کھولنا پڑا, کیونکہ وہ دن ضائع نہیں کرنا چاہتے, جو ان کو آرڈر تھا اس کو امپلیمنٹ کرانے کی کوشش کی تو کھولی تھی. اور پھر جب ان کے ڈی سیٹ کیے تھے لوگ تو بھی رات کے 11:30 بجے عدالت کھلی تھی, اور عدالت کھلنے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ان کو ڈی سیٹ کرتے ہیں جو 20 لوگ ہیں یہ الیکشن میں نہیں حصہ لے سکتے, تو وہ رات آپ کو یاد نہیں ہے, وہ رات آپ کو یاد ہے, یہ غلط بات ہے. دونوں چیزوں کا برابر لیں, عدلیہ وہ فیصلہ کرتی ہے جو آئین اور قانون کے مطابق ہوتا ہے, اور ثبوت اگر نہیں ہوں گے تو کوئی بھی عدلیہ کسی کو بھی غلط نہیں کہہ سکتی. तो इस हफ्ते की ये सारी चीजें चल रही हैं और पेट्रोल जी सस्ता हो गया है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस थी पेट्रोल सस्ता होने की वो पूरी नहीं हुई है। बढ़ाया तो 100 रुपए था लेकिन कम किया तो सिर्फ 18 रुपए, तो दिस इज नॉट गुड। जबकि डॉलर्स को अगर आप देखें तो वो $23 कम हुआ है, तो $23 का मतलब है कि कम से कम 30%, अगर 100 रुपए बढ़ाया तो 30-40 रुपए तो कम करना बनता था ना बॉस, अगर आपने वो कम नहीं किया तो। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये पेट्रोल सस्ता किया इसलिए कि जमनी इलेक्शन हो जाए, ये लोग जीत जाए, लोगों को वो करें क्या नाम है थोड़ा सा फैसिलिटेट करें और उसके बाद 1 तारीख को फिर पेट्रोल बढ़ा देंगे। तो देखें ये जुल्म होगा। अगर नून लीग ये काम करेगी तो मैं समझता हूं बहुत ही बुरा काम होगा, ये आवाम से मजाक होगा और ये सब चीजें बहुत गलत होंगी। क्योंकि आवाम ये समझ लें कि जब दो हाथी लड़ते हैं ना जंगल में तो हाथियों का नुकसान कम होता है, घास फूस ज्यादा पिस जाती है और घास फूस का बहुत नुकसान होता है। तो अभी पाकिस्तान की आवाम सिर्फ एक घास फूस बनी हुई है, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो आपकी एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो नून लीग हो, ये सब आपस में लड़ रहे हैं और बेचारे आवाम उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा और ना ही कभी सोचेंगे। क्यों सोचेंगे, वो सिर्फ वोट के लिए होते हैं। वो किसी ने सही कहा है ना कि एक साहब वोट लेने गए तो जाके बोलते हैं कि देखो मेरी मेरी सिंसियरिटी देखो कि मैं तुम जैसे टके टके के लोगों के पास आए वोट मांगने। तो ये हमारे मिनिस्टरों का हाल है कि वो आते नहीं है, वो टके टके के लोग समझते हैं, सिर्फ वोट के चाहिए, वोट के लिए एक शनाख्ती कार्ड चाहिए और एक ठप्पा चाहिए, उसके बाद आप कौन मैं कौन। जैसा कि पीटीआई के मुल्तान के जलसे में हुआ कि जब इमरान खान साहब शाह महमूद कुरैशी के घर गए तो उन्होंने दरवाजे खोल दिए और सब लोग अंदर चले गए, फिर वहां पे लोगों ने उनके ही कारकुनों ने एहतजाज किया और उन्होंने यही बात की क्योंकि हम गरीब हैं इसलिए हमें गेटों से अंदर नहीं घुसने दिया, हमारे लिए ताले लगा दिए। तो किसी भी पार्टी का कारकुन हो तो भाई आपकी औकात सिर्फ यही होती है, तो बी केयरफुल। जितनी बात आप अपने लीडरों की मानते हैं खुदा के लिए उतनी अल्लाह की, अपने माँ बाप की मान लेना तो शायद आपका कुछ भला हो जाएगा। लीडरों से बाहर निकलिए और अपने मुस्तकबिल को अपने हाथ में लीजिए, अपने माँ बाप की खिदमत कीजिए और अपने लोगों का कहा मानिए। और आर्मी हो, अदलिया हो, जो भी हमारे मौजिज जज हजरात या आर्मी के लोग हैं उनको बुरा मत कहिए, उनको कहने से आपको क्या मिलेगा सिवाय इसके कि आप दुनिया में जगहजाई करेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। जितनी भी कौमों को देख लें कोई भी कौम अपने भेदों को खोल के सामने नहीं रखती, बल्कि कोशिश ये करती है कि अगर कोई गलतियां हैं भी तो उसको अंदर ही अंदर बैठ के सुधार लेनी चाहिए, बनिस्बत इसके कि बाहर आके चीखो चिल्लाना शुरू कर दें। एनीवे, हमारा प्रोग्राम वीकेंड विद असेंबली स्टार्ट हो चुका है और आपकी कॉल का हमें इंतजार है। आप अगर कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कीजिए 4166201778 पे और हमें बताइए कल के इलेक्शन में कौन जीतेगा और कौन हारेगा। लेकिन प्लीज फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके कोई भी व्यूज है मैं सुनूंगा, आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन बदतमीजी नहीं होगी सर, ना ही कोई किसी को बुरा भला कहेगा, आपको किसी से भी कोई शिकायत है, खासतौर पर मैं आर्मी के बारे में कहूंगा प्लीज अगर आप अच्छे अल्फाज इस्तेमाल ना करें तो बुरे भी मत कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 6241662017778 पे और कॉल कीजिए और हमसे बात कीजिए और अपने कोई भी व्यूज हैं इन सारी चीजों पे जो हमने अभी बात की है उस पर जरूर बताइए। तो हम अपने स्पॉन्सर्स की जब तक बात करते हैं, इमीडिएट रिस्पॉन्स सर्विसेज ये एक सिक्योरिटी फर्म है और ये कमर्शियल कॉर्पोरेट सर्विसेज, रिहायशी हो या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हो, वेयर हाउस हो, हॉस्पिटल हो, कंस्ट्रक्शन साइट हो, ट्रांसपोर्टेशन यार्ड क्यों ना हो, और बल्कि अब तो मैं समझता हूं कि कोविड गया नहीं है दोबारा रहा तो स्क्रीनिंग गार्ड्स की भी जरूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए भी आपको बहुत ही जबरदस्त सिक्योरिटी फराहम करते हैं। और सबसे बढ़कर ये इनकी सिक्योरिटी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आज की जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज करते हैं, उसको यूज करते हैं टेक्नोलॉजी को और उसके साथ वो आपको सिक्योरिटी देते हैं, 100% आपको सिक्योरिटी देते हैं। तो आपको अगर अपनी किसी भी चीज के लिए सिक्योरिटी चाहिए तो आप अभी कॉल कीजिए 607-987-0002 और www.irfi.ca पर और आप इनसे चाहें तो बात कर सकते हैं। और आप अगर ये बताएंगे कि आपने हमारा प्रोग्राम सुना है तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि अपनी सिक्योरिटी के लिए कभी भी जरूरत पड़े तो आप सिर्फ इमीडिएट रिस्पॉन्स सर्विसेज को ही जरूर उनसे बात कीजिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब भी प्रोवाइड करते हैं, अगर आपको जॉब चाहिए और आपके पास जॉब नहीं है तो आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब इनसे हासिल कर सकते हैं। और अगर आपने लाइसेंस नहीं भी लिया तो भी बॉस मसला नहीं है, या आपको लाइसेंस भी दिलवाएंगे, आपको तैयारी भी करवाएंगे और उसके बाद फिर आपको वो जॉब भी देंगे। जॉब की गारंटी इमीडिएट रिस्पांस सर्विसेज देता है, वो किसी को निकालते नहीं है जब तक आपका दिल ना भर जाए, और पैसे भी अच्छे देते हैं, और जो दूसरे लोग आपको पेमेंट करेंगे उनसे अच्छे ही पैसे होंगे। तो कॉल कीजिए अभी 6479870002 www.irfi.ca। और हमारे पास हैं पिज़्ज़ा 786 के बारे में मैं आपको बता दूं कि पिज़्ज़ा 786 बेहतरीन, ज़बरदस्त और हलाल पिज़्ज़ा है। और अगर आप ही अगर आप मार्कम में तो ज़रूर जाइए, बटर चिकन पिज़्ज़ा भी और सब कुछ है। तो आप कोशिश कीजिए पिज़्ज़ा 786 पे कॉल कीजिए 9055547886। और हमारे पास कॉलर मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। कॉल हमारी ड्रॉप हो गई, शायद उनको लगा कि हम और तीन चार कमर्शियल बोलेंगे। ऐसा नहीं है भाई, जब आपकी कॉल आती है हम कोशिश करते हैं कमर्शियल बाद में बोल दें, पहले आप हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, आपके व्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आप जो बात करना चाहें कीजिए, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, किसी को भी चाहते हैं, आपके पास ये प्लेटफॉर्म है जहां आप ओपनली बोल के लब आजाद हैं तेरे। हमारे पास अजवा पिज्जा थॉर्नक्लिफ में हलाल बेहतरीन मजेदार पिज्जा है, और अजवा पिज्जा के बारे में सिर्फ कहूंगा एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। तो अजवा पिज्जा पे कॉल करने के लिए कॉल कीजिए 4164232792। और मजे की बात यह कि अजवा पिज्जा हमारे दोस्त हैं अजमल खलीली साहब, जो कि बहुत ही प्यारे और मेहरबान और जबरदस्त इंसान है। उनके 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 बारे में मैं क्या कहूं अजमल खलीली साहब के बारे में, कि हम जब भी जाते हैं ना, नए नए फ्लेवर, नई नई चीजें। अच्छा मजे की बात, ये सिर्फ पिज्जा ही नहीं होगा, बटर चिकन पिज्जा भी इन्होंने मुतारफ कराया। उसके अलावा इनके पास बर्गर्स भी हैं, विंग्स भी हैं, और बड़े जबरदस्त चीज फ्राइज भी हैं। ये सब बता रहा हूं, मुझे मेरे मुंह में पानी आ गया, जो मेरे साथ बैठी हैं उनके भी मुंह में पानी आ रहा है खाने के लिए, कुछ ना कुछ उन्हें भी चाहिए। तो कॉल कीजिए अजवा पिज्जा, अगर आप कभी जाएं खाएं तो 4164232792 पर, और बताइएगा कि आपने हमारे प्रोग्राम में सुना है तो आपको डिस्काउंट भी वो देंगे। वेंटेज वीडियो प्रोडक्शन, शादी हो, बर्थडे हो, कोई भी इवेंट हो, आपकी सुनहरी यादों को महफूज करते हैं वीडियो पिक्चर की सूरत में, आपको बेहतरीन सर्विसेज देते हैं, और वो भी आपके बजट में रहते हुए। अगर आपको एक्टर या मॉडल बनना है तो भी आप अपना पोर्टफोलियो उनसे बनवा सकते हैं। सोशल मीडिया एंड टीवी कमर्शियल भी आप उनसे बनवा सकते हैं, और वो भी अपने ही बजट में रहते हुए। चर्च, मंदिर या मस्जिद की फंडरेज कैंपेन भी आप उनसे शुरू करवा सकते हैं ताकि फंड रेज कर सकें। तो कॉल कीजिए 6477454104 कॉल करके बताइए कि आपने इस प्रोग्राम में सुना था, ताकि आपको डिस्काउंट भी मिल सके, और अभी उनके डिस्काउंट भी चल रहे हैं। तो आप हमें कॉल करना चाहें तो कॉल कीजिए 4166201778 पर, 4166201778 पर। लास्ट वीक में जितना कुछ भी हुआ है हमारे पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, वो मैं बड़ा क्लोजली मैंने वॉच किया, और कुछ बाखबर ज़राए के मुताबिक भी कुछ चीज़ें मेरे पास हैं, जो कि ये हैं कि कल इलेक्शन जो है पाकिस्तान में हो रहा है, यानी कि हमारे यहाँ रात होगी वहाँ दिन होगा, तो उसमें शायद कोई बदमजगी हो। जैसे कि तीन दिन पहले कराची में लसानी फसादात कराने की कोशिश की गई थी, और एक ऐसा कत्ल जो हैदराबाद में एक होटल में हुआ था दो लोगों के झगड़ों पर, उसको लसानी बुनियाद पे बढ़ाने की कोशिश की गई थी, जिसके अंदर बकौल सिंध गवर्नमेंट नासिर शाह साहब उन्होंने कुछ पिक्चर्स और वीडियो दिखाई हैं। फिर मैं कहूंगा, फिर पीटीआई के लोग बोलेंगे यार आप सारी नेगेटिव बातें करते हैं, लेकिन मैं वो बात बता रहा हूं जो पूरे हफ्ते, क्योंकि मैंने ARY पे भी ये चीज देखी, नासिर साहब ने ARY पे भी ये चीज चलाई और कहा कि इसके अंदर कुछ पीटीआई के लोग शामिल थे जो कोशिश कर रहे थे कि हंगामा राय शुरू हो, लेकिन हमने कंट्रोल कर लिया। और कल जाके फिर कराची और हैदराबाद और सिंध के अंदर मामला बहुत अफाम तफीम के साथ, तहमुल के साथ उसको टैकल किया गया, और कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया, और जिसने कत्ल किया था उसको भी अरेस्ट किया। लेकिन ये बहुत बुरी लहर थी, खुदा ना खास था, अल्लाह ना करे अगर ये आ जाती तो कराची एक दफ़ा फिर 90s की दिहाई में चला जाता, जहां बहुत खून खराबा हो चुका है, क्योंकि लसानी फसादात में कोई नहीं बचता। फिर उसके अलावा ये हमजा शहबाज शरीफ का आज लास्ट डे होगा, क्योंकि कल इलेक्शन होंगे, تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہتے ہیں یا نہیں رہتے. حمزہ شہباز صاحب نے بھی جو 100 روپیز کا کہا تھا اور 100 یونٹس کا کہا تھا کہ میں فری کر رہا ہوں, تو اس پہ بھی ہماری آنریبل کورٹس نے فیصلہ واپس کرایا کہ نہیں, آپ کیونکہ سب الیکشن کے لیے کر رہے ہیں تو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے اور ایسا بالکل آپ کو نہیں کرنا چاہیے. حکومت میں ہونے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ حکومت کے پہیے کو اپنے لیے استعمال کیجیے. ہوتا یہ ہے کہ جو گورنمنٹ میں ہوتا ہے وہ سب کا مائی باپ بنا ہوتا ہے, کسی کی سنتا ہی نہیں ہے. تو بس وہی والی بات ہے, ہم تو صرف دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں, چاہے وہ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہو, نون لیگ کی ہو یا پی ٹی آئی کی ہو. کل عمران خان صاحب نے جلسے میں بولا کہ ہمارے دور میں جو ہے وہ آزاد تھے, میڈیا آزاد تھا. تو کل ہی کل پھر اے آر وائی پی بھی ایک پروگرام میں اس پہ بحث ہوئی کہ اگر آزاد تھا تو پھر بہت سارے جو جرنلسٹ تھے ان کی نوکریاں گئیں, ان کو اغوا کیا گیا, ان کو مارا پیٹا گیا, تو کون سی آزادی کی بات کریں. اسی طرح نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے عدلیہ کو, ہم نے جو ہے میڈیا کو آزاد رکھا ہوا, لیکن کالز آ جاتی ہیں, دھمکیاں آ جاتی ہیں, ہمارے جتنے اینکر ہیں ان لوگوں کو پریشر دیا جاتا ہے کہ ایسا کرو ویسا کرو یہ کرو. تو بہرحال ابھی ملک کی صورتحال تھوڑی سی انسٹیبل ہوئی ہوئی ہے, لیکن کل کے بعد میں بھی شاید اسٹیبل ہو جائے گی. گورنمنٹ آف پاکستان جو شہباز شریف کی گورنمنٹ ہے وہ کوشش تو نہیں, لیکن ہاں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ آرٹیکل 6 کا شاید ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ آرٹیکل 6 لگانے کے لیے ان چاروں لوگوں پہ کیس چلائیں گے. اگر ان پہ آرٹیکل 6 لگ جاتا ہے تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ باتیں جو آج تک میں نے نہیں کہیں وہ میں ساری سامنے لے آؤں گا. تو میں تو ایک بات جاننا چاہتا ہوں سر, اگر وہ جو باتیں عمران خان صاحب کے پاس ہیں تو خدا کے لیے آرٹیکل 6 نہ بھی لگے تو سامنے تو لائیں, وہ فیسز بتائیے جو کہ غلط فیسز ہیں ہمارے پاس, وہ ان لوگوں کا بتائیے جو کہ ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں, بتائیے تو صحیح, کھل کے آئیے تو صحیح, لیکن ثبوت کے ساتھ لازمی دیجئے تاکہ ان کو ایک طرف سائڈ تو کریں. ہمارے ملک کو کھوکھلا کر دیا کھا کے, سائڈ تو کرنا چاہیے نا. آرمی بھی اگر غلط ہے تو بولتا ہوں ثبوت تو دیں. اب جیسے وہ بیانیہ تھا امریکہ کا, وہ صحیح تھا غلط تھا ثبوت نہیں مل رہے, سب ایک ہی بات کہے جا رہے ہیں کہ جی ہمیں نہیں دکھایا, ہمیں نہیں دکھایا. ایون تو قاسم سوری صاحب نے جب یہ پڑھا جو فیصلہ انہوں نے لکھا تھا, انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے, لیکن بعد میں انہوں نے پھر انٹرویو میں کہا کہ مجھے اس کے کچھ پوائنٹس پتا تھے, میں نے دیکھا نہیں تھا. تو یہ سب چیزیں ایسی ہو رہی ہیں, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. سوشل میڈیا جتنا کچرا کر رہا ہے ہماری آرمی کا اور ہمارے ملک کا, وہ کوئی دوسرا نہیں کر رہا. اور میں تو بہت ہی باوسوک ذرائع سے یہ میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں, یہ سوشل میڈیا کا جو پروپیگنڈا یا ایجنڈا ہو رہا ہے آپ یقین مان لیجئے, یہ جو ہے یہ غیر ملکی سازش ہے اور یہ آپ کو پتہ چلے گی کچھ سالوں کے بعد کہ ہم نے کیا اچھا کیا کیا. تو پلیز اس کو شیئر مت کیجئے, اپنے ملک کو برباد مت کیجئے. ہمارے پاس ایک کالر ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی.
السلام, کیا ہے جناب؟ خیریت
جی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک سر. نام بتائیں گے اپنا؟
جی میرا نام افسار ہے.
افسار
جی, میں آپ کا پروگرام سن رہا تھا.
جی افسار بھائی,
تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو الیکشن کل ہو رہے ہیں تو ویسے تو ظاہری تو عمران خان 100% جیت رہے ہیں, لیکن آپ کو تو پتا ہی کہ ایک دو چار دن سے لوگوں کو اٹھانا, لوگوں کے ووٹ ادھر سے ادھر کر دینا,
وہی میں بھی بات کر رہا تھا. جو پاور میں ہوتا ہے نا, پتہ نہیں اس کو کیا خمار چڑھتا ہے, وہ دوسرے کی بینڈ بجا دیتا ہے.
تو یہ ایک تو یہ, دوسرا ہی جیسا کہ آپ آرٹیکل 6 کی بات کر رہے ہیں,
جی جی,
میرا خیال میں اس سے پہلے نواز شریف اور ان کے تو پہلے آرٹیکل 6 لگ جانا چاہیے زرداری پہ, اور انہوں نے تو کیا نہیں کہا. تو یہ کس خاتے میں عمران خان کو جو ہے
آرٹیکل 6 سر؟ آرٹیکل 6 نا صرف ایک وجہ سے لگتا ہے جو قانون میں ہے, اور وہ ہے کہ اگر آپ آئین توڑیں. تو اب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ان پہ کرپشن کے تو الزامات ہیں نواز شریف اور زرداری پہ, لیکن آئی ڈونٹ نو, آئین کا میں نے ابھی تک سنا نہیں کہ انہوں نے آئین کو توڑا ہے کبھی کا آرٹیکل 6 لگے. سر ایک جگہ آرٹیکل 6 لگا تھا
فوج کے لیے, کیا نہیں کہا؟
سر میں آپ کو بتاتا ہوں, نہیں فوج کے لیے آرٹیکل 6 نہیں ہے.
مریم نے
سر فوج کے لیے نہیں, سر سن تو لیں,
پارڈن کیا گیا.
سر میری بات سنیں گے افسار صاحب, الطاف حسین صاحب پہ آرٹیکل 6 لگا تھا. کیوں لگا تھا آرٹیکل 6؟ کیونکہ انہوں نے پاکستان کے خلاف, ریاست کے خلاف نعرے بازی کی تھی, اور وہ یہ تھا جو آئین میں ہمارے لکھا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی نعرہ عوام کے ساتھ مل کے پاکستان کے اگینسٹ لگاتے ہیں تو آرٹیکل 6 لگتا ہے, یا اگر آپ آئین کو توڑتے ہیں تو آرٹیکل 6 لگتا ہے. جی
آپ بولیے, عمران خان نے کون سا آئین توڑا ہے؟
ये जो पार्लियामेंट, ये जो इनका नो कॉन्फिडेंस का वोट था उसके ऊपर जो कासिम सूरी साहब ने रूलिंग दी थी, बकौल सुप्रीम कोर्ट, नॉट मी, वो हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं।
इतना बड़ा जुर्म है कि उसको तो आर्टिकल 6 लगा दिया जाए।
सर वो आइन में लिखा हुआ है कि अगर कोई इस तरह से करता है रूलिंग,
जो मानते नहीं लोग
सर, वो आपकी बात सही है, वो आपकी बात मानता हूँ। आईन में बहुत सारी चीजें लिखी हैं जो नहीं मानते लोग, सब वही ना, सब अपने अपने मतलब की चीज। अब ये मतलब की चीज है नवाज शरीफ के लिए, मतलब शरीफ गवर्नमेंट के लिए, तो वो इस चीज को उठा लेंगे।
लेकिन मैं इतना अर्ज कर दूं आपको,
जी जी,
इमरान खान 100% सारी सीटों से जीतने चाह रहे, एक दो सीट के।
और अगर सर नहीं जीता, सर अगर नहीं जीता, मिसाल के तौर पर अल्लाह ना करे अगर नहीं जीता,
तो समझे कि 101% धांधली हुई है।
अच्छा ठीक है,
बहुत शुक्रिया आपका।
थैंक यू अम्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जैसा कि ये अफसार साहब बोल रहे हैं कि इमरान खान को 100% सारी सीटों पर जीतना चाहिए, तो बिल्कुल सही है, जीतना चाहिए और फेयर इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन एज यूजुअल वही वाली बात है, अब अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, कबलज वक्त है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। और जितने सर्वेज आ रहे हैं वो भी जो ARY पे दिखाए जाते हैं उसमें इमरान खान जीत रहा होता है, जो जियो पे दिखाए जाते हैं उसमें नवाज शरीफ जीत रहा, मतलब नून लीग जीत रही होती है। बड़ा कंफ्यूजन है, जब आप जियो लगाते हैं तो नून लीग के गुण गा रहे होते हैं लोग सारे, उसी मोहल्ले उसी जगह के लोग। मुझे तो लग रहा है आवाम भी जो ना सबको मामू बना रही है। अब ये नहीं पता, हो सकता है ना इमरान खान जीते ना नवाज शरीफ जीते, ऐसा मामू बनाए कि किसी आजाद उम्मीदवार को लेकर आ जाए, हो सकता है ऐसा, हो सकता है। आवाम को करना भी यही चाहिए, सबको मामू बनाए, जो मिले उसको बोले जी मैं आपका साथी हूं, लेकिन वोट अपने दिमाग से अपनी अकल से उसको दे जिसके लिए वो देना चाहता है, जिसके लिए वो करना चाहता है। लेकिन ये भी बात सही है कि धांधलियां होती हैं, जो पावर में होता है ऑफकोर्स वो पावर में ही रहता है, तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन आप हमें अगर कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 416-620-1778 पे। हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक कैसे ले रहे हैं, हम आपको एक मिली नगमा सुना रहे हैं, और मिली नगमे के लिए फिर मैं बोलूंगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। खुदा के लिए अपनी आर्मी को गंदा मत कीजिए, पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी, नंबर 1 इंटेलिजेंस, उनको बर्बाद मत कीजिए। तो सुनते हैं मिली नगमा।
बारूद भी है सीने में, दिल में।
हम तेरे सिपाही हैं, ये हम सबको सोचना चाहिए अपने मुल्क के लिए कि हम कहीं पर भी हैं, चाहे पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में हैं, लेकिन हम हैं अपने मुल्क के सिपाही। तो आप हमें अगर कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कीजिए 416-620-1778 पर, और जब आप हमें कॉल करें तो आपके जो भी व्यूज़ हैं वो ज़रूर आप हमसे डिस्कस कीजिए, आप हमें बताइए। जैसे कि अभी अब्रार साहब ने कहा कि पाकिस्तान में अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें इमरान खान को फॉर श्योर आना चाहिए और सारी सीटों पर आना चाहिए, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर ये होना है तो बिल्कुल होना चाहिए और इमरान खान साहब को आना चाहिए और उनको जीतना चाहिए और उनको 20 सीटें लेनी चाहिए। लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो फिर क्या, एक नया बयानिया शुरू होगा, फिर ये होगा कि सब धांधली थी और हमने आपको पहले ही कहा था। तो अगर ये सब चीज़ें होंगी तो इसका एंड कब होगा, मतलब हमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसका एंड तो करना होगा ना। तो हमारे पास कॉल आ गई है, हम उनसे बात करते हैं कॉलर से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं आप?
सर ठीक ठाक है, नाम बताएंगे अपना?
मेरा नाम अशफाक है जनाब।
जी अशफाक भाई बोलिए।
जनाब बस मैंने यही अर्ज करनी थी, अभी हाल ही में मैंने एक बयान पढ़ा मरियम नवाज शरीफ का, कि उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ ने अपनी नस्लें पाकिस्तान के लिए तैयार की हुई है। तो ये पढ़ के हंसी भी आती है और रोना भी
मैंने
आता है।
सर मैंने आपका ही बयान सुन के मुझे हंसी आ रही है। मैं क्या बोलूं?
नहीं आप यकीन करिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये आप बयान पढ़ सकते हैं।
बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बयान है, ये बयान आपने सही कहा। एक जलसे में उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की नस्लें जो पाकिस्तान के लिए कुर्बान, बिल्कुल आपने कहा।
इतने लायक बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, और ये इनकी नस्लें तैयार हो गई। तो बस यही अर्ज करना था, हमें सोचना चाहिए कि हम किधर जा रहे हैं।
एग्जैक्टली मैं अभी यही बोल रहा हूँ कि कब खत्म होगा, कब तक चलेगा। चले थैंक यू अम्मा जी, थैंक यू अशफाक साहब। अशफाक साहब ने बिल्कुल सही बात पॉइंट आउट की है कि मरियम नवाज ने कहा था कि नस्लें जो हैं वो इनकी हैं, हमारी जो नवाज शरीफ की नस्लें वो पाकिस्तान के लिए, लेकिन ये बात बिल्कुल ट्रू है। ऐसी बातें कीजिए जिस पे यकीन भी आए, प्लीज पॉलिटिक्स में इतना आगे मत चले जाएं कि आप चांद तारे तोड़ने की बात करें और फिर हाथ में कुछ भी ना आए, तो ये मत कीजिए। आपने फिर वही गलत बात की है कि जी नस्लें, कौन सी नस्ल आपकी यहाँ पे मौजूद है मुझे बताइए, सिवाय एक मरियम नवाज के, हमजा के, बाकी सब तो लंदन में बैठे हुए हैं। कौन सी नस्ल आपकी यहाँ पर है मुझे बताइए, कौन आपके साथ यहाँ पर है? कोई भी तो नहीं है। तो ऐसी बातें मत कीजिए जिससे कि ये लगे कि आप सिर्फ बातें कर रहे हैं और लोगों को मामू बना रहे हैं। मत बनाइए मामू, अब लोग मामू नहीं बनेंगे, अब देखते हैं लोग क्या करते हैं। और मैं तो कहूंगा यही आवाम से कि बिल्कुल सही, आप सबके जलसों में जाएं, सबके जलसे कामयाब बनाएं, सबको खुशफहमी में मुब्तला कीजिए कि वो जीत रहे हैं। वोट जाके उसको दीजिए जो आपकी अकल और समझ कहती है, कुछ नहीं तो अपने करीब के लोग जो बेचारे गरीब हैं, जो आजाद उम्मीदवार हैं उनको जिता दें यार, छोड़ दें पार्टियों को, आजाद उम्मीदवार को जिता दें। तो हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं, बल्कि कॉल हमारी ड्रॉप हो गई है शायद, तो उनको जिता दें। कम से कम वो आपके मोहल्ले का आपका अपना भाई बहन दोस्त यार होगा, आगे जाएगा, कुछ तो करेगा। हाँ लेकिन ये लिखवा लें कि वो इक्तदार में, मतलब जीतने के बाद किसी पार्टी में ना चला जाए, पैसे लेके ना चलाए, ये जरूर लिखवाइए। वो आजाद है तो आजाद ही रहे। एक नई पार्टी बननी चाहिए आजाद उम्मीदवार की, मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए। हमारे पास एक और कॉलर है, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम
जी। अस्सलाम वालेकुम, हमजा जरदारी अर्ज कर रहा हूँ।
जी हमजा साहब कैसे हैं?
अल्लाह का करम, मौला पंतन पाका। देखिए अभी आप जो इशू के ऊपर बात कर रहे थे, कराची हैदराबाद में प्रॉब्लम, मैं तकरीबन 5 हफ्ते वहाँ रह के आया हूँ। अवध ट्रेवलिंग टूवर्ड कराची से नवाबशाह और पूरे एरिया में कोई ऐसा प्रॉब्लम
नहीं? नहीं
नहीं, आई एम कमिंग टू द
पॉइंट, थैंक यू। जी जी,
ये है कि 14 इजला में पीपल्स पार्टी जीत गई, ये जो बात नासिर शाह साहब ने कही है वो किसी हद तक सही है। प्रॉब्लम हमें पश्तूनों से नहीं है, जो मकामी पश्तून है उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो पंजाबी हैं, उर्दू बोलते हैं, सराइकी, सिंधी, बलोची, व्हाटएवर, राइट, सब हम पाकिस्तानी हैं।
बिल्कुल।
प्रॉब्लम वहां आ गई है कि इमरान खान गवर्नमेंट ने 60 लाख अफगानियों को शनाख्ती कार्ड दिए, जिसमें से 20 लाख जो अंदरून सिंध में और 40 लाख कराची में।
ये पहली इन्फॉर्मेशन है मेरे लिए, अभी तक आई नहीं है
जनाब, है ना। तो अब ये है कि वो उन्होंने कराची में अफगानिस्तान के झंडे लहराए और कहा कि सिंधियों को हम देख लेंगे, और बलोच को कोयटा में सिंधी समझ के मार डाला। तो मसला जो है इलीगल इमिग्रेंट्स का है, जो पाकिस्तान में घुसे हुए हैं, यही इमिग्रेंट्स अफगानिस्तान के ईरान में है, वहां प्रॉब्लम नहीं आता। प्रॉब्लम हमारे जो 4 यूनिट है उसके दरमियान में कोई मसला नहीं है। पंजाबी हमारे भाई हैं, पश्तून भी, बलोच भी, सिंधी भी, चाहे शहरी सिंध हो, देही सिंध हो, प्रॉब्लम सारा ये आया। अच्छा, हो सकता है कि कौम परस्तों ने भी उससे मौका फायदा उठाया, क्योंकि हमने उनको काउंसिल की सीट भी नहीं जीतने दी, और ऊपर से जो है जो हमारे कौम परस्त है उन्होंने सही इकदाम किया कि जो एएनपी या पश्तून है उनसे बात बात करी।
जी जी।
लेकिन ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स है सोहराब गोट में और अफगानी, उन्होंने जो है ना अंदरूनी सिंध से आने वाली बसों फैमिली से,
जी मैंने सुना हैदराबाद, जी हैदराबाद से आने वाली बसों पर अटैक।
अब देखें फिर घुमा फिरा के सिंध को बदनाम किया जाए, सिंधी कर रहे, सिंधी कुछ जी नहीं जी कर रहे, मेरे अपने गांव तक अफगानी काम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं उनको कहते हैं कि यार चलो हमारे मुस्लिम भाई हैं। लेकिन देखें बात सुने पल्लीजू साहब ने बहुत अच्छी बात की, हेमंत देखें कारोबार करते हैं क्या, बंदूक रखते हैं भाई, अगर कोई भी कस्टमर आपसे आर्ग्यूमेंट करे कि आपने सही नहीं दी तो क्या आप उठा के बंदूक मार देंगे?
ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल सही बात।
तो ये जो ये तजादात हैं और इसकी वजह से जो है ना सिंध झील रहा है, वरना यकीन करें इतना अमन आमान, और रात को ड्राइविंग करना, 3-3 बजे मैंने ड्राइव किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये कुछ बैरूनी होते हैं जिसके इशारे पे मामला चल रहे हैं।
सर यही मैं अपने इस शो में बार बार कह रहा हूँ कि खुदा के लिए जो गैर मुल्की साजिशें हो रही हैं हमारे मुल्क में उनसे बचिए, और ये हमारी आवाम का काम है कि उससे थोड़ा सा इज्तनाब करें, लेकिन पता नहीं क्या हो गया आंखों पे पट्टी बन गई।
सर देखिए बात सुने, ये हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का काम है कि ये जो बैड घुसपैठ बैठे हैं ना इनको चेक इन करें, तो सिंध में अमन मान रहेगा तो पाकिस्तान में अमन मान रहेगा, और ऐसा कोई मसला नहीं है। सिंध वाले भी मोहब्बत वतन है कराची से कश्मीर तक। अब मसला ये है कि ये जो घुसपैठ वाले हैं ना वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। थैंक यू टेकिंग माय कॉल।
थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमजा जरदारी साहब ये बात कर रहे थे सिंध के लिए, सिंध से इनका ताल्लुक है, ये अभी वहां पे रहकर आए, और ये बिल्कुल ट्रू बात कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के झंडे भी लहराए गए हैं इस 2 दिन के अरसे में। तो मैं वाकई ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से पूछना चाहूंगा कि क्या हमारी कंट्री में चेक एंड बैलेंस है कोई ऐसा कि जिसमें हम ये कर सकें कि एक हंगामा राई में अफगानिस्तान के झंडे लहराए जाएं, या लोग वहां पे जो जैसा कि कह रहे हैं, मैं अब इस पर जरूर तहकीक करके अगले हफ्ते आपको इस पर जरूर एक पूरा व्यू दूंगा कि जो आ गए हैं या नहीं आए हैं। ये तो मुझे पता है कि गैर कानूनी तारकीन वतन जो अफगानिस्तान से वो तो आए हैं, लेकिन जो इनकी असेसमेंट है जो इन्होंने मुझे न्यूज़ दी है उस पर ज़रूर तहकीक करनी पड़ेगी। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क को और हमारे लोगों को कोशिश में फिर ये कहूँगा कि अच्छे से रखे और अमन अमान हमारे मुल्क में आए, और सबसे पहले हमारी ये जो स्टेबिलिटी है, जो हमारी गवर्नमेंट्स चेंज होने के बाद से जो मसले चल रहे हैं, जो इमरान खान की गवर्नमेंट के आने के बाद हुए, फिर अब हुए, और जब कंटिन्यू चल रहे हैं, ये क्या होगा। जैसे कि एक दानिश्वर जो है उन्होंने एक बात कही थी कि हम सब चीज़ें वापस तो कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो यूथ जो बेरारवी का शिकार हो गया है, जो अपने ही लोगों में खोट निकालने लगा, जैसे कि वो बात कर रहे थे, उनका इशारा पीटीआई की तरफ था, उनको कैसे वापस लाएंगे? और अगर वो वापस नहीं आएंगे तो ज़रूर ऑफकोर्स हमारे मुल्क के लिए नुकसान है कि यूथ उन लोगों को फॉलो करिए जिनका कोई स्टेक नहीं होगा गवर्नमेंट में या नहीं, तो फिर क्या होगा। तो बहरहाल ये उनका अपना एक व्यू था, मैं उनके व्यूज़ आप तक पहुंचा रहा हूं। आप हमें कॉल करना चाहें ज़रूर कॉल कीजिए 416-620-1778 पर, और कॉल करके अपने व्यूज़ हमें बता सकते हैं। पूरे हफ्ते का जो हम रिव्यू देते हैं, हम बात करते हैं, वो हम बता रहे हैं कि हो रहा है सब कुछ पाकिस्तान के अंदर गलत, लेकिन बस वही है कि कुछ भी नहीं कर सकते। जिसका इक्तदार होता है वो अपनी मनमानी करता है, और जो अपोजिशन में होता है वो बेचारा उसको झेल रहा होता है। बड़े मज़े की बात है, बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं कहूँगा लेकिन मज़े की बात इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ा सा पीछे जाइए, जब इमरान खान साहब का दौर था तो इमरान खान साहब के दौर में शरीफ फैमिली जो जुमले कहा करती थी धांधली के, इसके उसके सारी चीज़ों के, अब वही यू टर्न हो गया है कि अब इनका दौर आ गया है, अब इमरान खान साहब सेम जुमले दोहरा रहे हैं जो पहले मरियम नवाज कहती थी, अब इमरान खान साहब कह रहे हैं। तो कब तक हम लोग कब तक कोलू के बेल की तरह इन लोगों के पीछे चलते रहेंगे और एक बत्ती पे लगा रहे हैं, चाहे वो कोई भी लीडर हो, हम उसके पीछे चले जा रहे हैं। बस जब तक हम स्टॉप नहीं करेंगे, जैसे मैं अभी कॉल लेने से पहले कह रहा था, हमें एक नई पार्टी बनानी चाहिए जिसका नाम होना चाहिए आजाद उम्मीदवार, जो आपके मोहल्ले से निकले, जिसको करोड़ों रुपए खर्च नहीं करने पड़े कि वो करोड़ों रुपए खर्च करेगा तो ही इलेक्शन जीतेगा, जिसे कैंपेन करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, सिर्फ 100 बैनर अपने इलाके में लगा दे, लोगों को पता होना चाहिए कि ये हमारा अपना बंदा, अपना दोस्त, अपना साथी है, और जरूरी नहीं है कि उसके हक में आप नारे लगाएं या फैसला करें। खामोश रहिए, जो पार्टी आती है उसको आप मामू बनाइए कि हम आपके साथ हैं, लेकिन आगे से वोट से आज़ाद उम्मीदवार को दें और उसे लिखवा के रख लें कि ये आज़ाद उम्मीदवार हमारे मोहल्ले का जो आ रहा है ये किसी पार्टी में नहीं जाएगा, इसकी अपनी जो आज़ाद उम्मीदवार की एक पार्टी होनी चाहिए उसको लेके चलेगा और हमारे लोगों के मसाइल हल करेगा। हमारे पास कॉलर हैं, हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम सलाम, क्या हाल है?
ठीक ठाक सर, नाम बताएंगे अपना?
नाज़िम।
सॉरी, नाज़िम,
आजम।
आजम जी, आजम भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं?
ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुना
जी, बोलिए आजम भाई, क्या कहना चाहते हैं? बोल के लब आजाद होते
हैं। कहना क्या चाहता हूँ, और कल तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ये सब झूठ था जो अमेरिका को क्लेम करते थे
बयानी के बारे में।
वजीर आजम के होते हुए भी किसी ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। आप देखो, वो बिल्कुल बंद कर दिया बाप
जी
अमेरिका ने पहले। तो कहने का मकसद ये है कि ये तो आइन शिकनी हो गई ना, आर्टिकल 6 लगाएं, इसको गिरफ्तार करें। इसने तो कुछ कुछ ना खुद कुछ किया ना किसी दूसरे को करने देना, ठीक है? और फरागोगी जो कि करप्ट हुकूमत थी वो लूट छूट करके मुल्क से भागी, ये उसकी हिमायत करता है। दूसरों को चोर चोर कहना तो बड़ा आसान होता है ना, ठीक है ना, कि वो भी चोर वो भी चोर, तो मैं हाजी। तो ऐसे नहीं हो सकता, अगर मुल्क को चलाना है तो इनको सोचना पड़ेगा। ये नहीं कि जलसू में या डिलीवर कुछ भी ना करे और हर वक्त पक पक करते रहे, जो क्या है उसको एक्सेप्ट करे। आप इसका प्रेशर देखें कि इतना हौसला नहीं कि असेंबली में बैठ सके। नवाज शरीफ दौर में सिर्फ 2 असेंबली में गया और पूरे बेनिफिट लेता रहा।
आजम भाई एक सवाल है छोटा सा, ये बताइए, आप जो बात कर रहे हैं इमरान खान फरागोगी के केसेस के बारे में, तो सर भाई इससे ज्यादा केसेस तो नवाज शरीफ पे हैं, शहबाज शरीफ पे हैं, मरियम नवाज पे हैं, जरदारी साहब पे, तो आप उनको कैसे अच्छा कहेंगे?
भाई उन्होंने जेल भी तो भुगती है ना, साबित करें उनको फांसी।
सर तो इसका मतलब इमरान खान जेल भुगतेगा?
हाँ,
तो फिर आप
जेल क्या होती है, एक थर्ड क्लास बंदे को डिप्टी स्पीकर के थ्रू ये असेंबली तलवाना था, इसको कोई समझाने वाला नहीं था भाई, आईन और कानून इसकी इजाजत नहीं देता।
सर देखिए, आईन शिकनी के बारे में मैं आपके साथ हूँ कि आईन शिकनी
आईन शिकनी हुई है,
सुन लीजिए, लेकिन
सरकार कर रहे 6 साल ये भी अंदर है, इसको पता चले कि जेल होती क्या है।
सर लेकिन आईन शिकनी के बारे में सही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस मुल्क का अच्छा हाल तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने या जरदारी ने भी नहीं किया। सर
भाई देखे, मेरी बात है, ये जन जो मनहरफ रकीन हुए हैं पीटीआई के, आपका मेरा कसूर तो नहीं है ना, कोई नहीं है ना।
हाँ, डीसीट कर दिया ना उनको सर, दोबारा
नहीं, मनहरफ हुए हैं ना वो।
हाँ, मनहरफ हुए,
ये उनको चोर लुच्चे लफंगे, उनके बच्चों को फैमिलियों को ब्लेम कर रहा था, पता नहीं क्या क्या लफ्ज उनके बारे में बोल रहा था। आपने दाएं और बाएं देखे, फवाद चौधरी और शेख रशीद, वो 13 पार्टी के बदल चुके हैं।
सर लेकिन सॉरी माजर, मरियम नवाज भी तो यही कर रही है जो जलसों में बोलनी है।
नहीं तो वो तो ठीक है फिर।
सर यहाँ का ठीक है, वहाँ गलत है।
करूँगा मैं, देखो अपने बाप के साथ वो आके उसने जेल काटी, ठीक है,
बिल्कुल।
कोई खतून पाकिस्तान की इतनी जुल्म रखती है?
लेकिन सर जेल काटना कोई क्राइटेरिया तो नहीं है कि आप पाक साफ हो गए?
क्राइटेरिया झूठी नहीं, साबित कुछ नहीं हुआ।
साबित नहीं हुआ ये बात आपकी मानता हूँ, लेकिन क्राइटेरिया नहीं है।
साबित करो, उनको फांसियां दो, हमें क्या लेना देना है?
बिल्कुल सही।
ये बुलशिट है, बंद करनी चाहिए कि चोर 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 और मैं हाजी। नहीं, ये अल्लाह की जात को पता है,
बेशक
कौन कुछ। थैंक यू
अमर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आजम साहब। आजम साहब ने जो बातें कही हैं आईन शिकनी के बारे में, वही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, वही सब लोग कह रहे हैं। मैं एक चीज बड़ा नोट करता हूं, कनाडा के अंदर जब मैं ये प्रोग्राम अपना ये चलता है मेरा और ये हो रहा होता है, तो बड़ा एक चीज आजकल कुछ ज्यादा नोट कर रहा हूं। पहले लोग जो है डिस्कस करते थे, बात करते थे, जब से पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद का मैंने नारा लगाया है, तो अब मैं नोट करता हूं कि पीटीआई के जितने भी दोस्त यार हैं हमारे भाई हैं सब, वो मुझे लगता है कि पाकिस्तान से ज्यादा पीटीआई और पाक फौज से ज्यादा इमरान खान के चाहने वाले हैं। क्योंकि अभी मैं अच्छी बातें करना शुरू कर दूं ना पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए, और जो वो सुनना चाहते हैं वो करना शुरू करूं, अभी देखें आप तांता बन जाएगा, वो बड़ी लंबी चौड़ी बहसें हो जाएंगी। तो सर मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, जितने मेरे भाई दोस्त लोग हैं, आप पार्टी को बिल्कुल पसंद कीजिए, आप लीडर को भी पसंद कीजिए। पाकिस्तान है तो लीडर है, और पाक फौज है तो पाकिस्तान है। बस ये जहन में रखिए, इनको कभी गंदा मत कीजिए, बुरा मत कीजिए। मेरी अक्सर बेशतर लोगों से मुलाकात होती है, जब बातचीत होती है तो मैं ये सोच रहा होता हूँ, और मैं बड़ा अफसोस करता हूँ इस बात पे कि पता नहीं हम लोगों को क्या हो गया, हम शख्सियत पसंदी की तरफ चले गए, जो कि हमारे मजहब ने भी मना किया है कि किसी भी शख्सियत पसंदी की तरफ मत जाइए। और फिर दोबारा कहूंगा, जितनी बात हम अपने लीडर की सुनते हैं, किसी भी लीडर की जो आंखें बंद करके उसके पीछे चलते हैं, इतनी बात अगर हम अपने माँ बाप की या अल्लाह ताला की सुन लें तो शायद हमें कुछ फला मिल जाएगी। कॉल कीजिए 416-620-1778, 416-620-1778 पर, और हम आपको बताते हैं अपने दोबारा से एक दफा फिर अपने स्पॉन्सर्स के बारे में। इमीडिएट रिस्पॉन्स सर्विसेज सिक्योरिटी के लिए आपकी बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कमर्शियल फर्म हो, कॉर्पोरेट सर्विस हो, रिहायशी सिक्योरिटी हो, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हो, वेयर हाउस हो, हॉस्पिटल हो, कंस्ट्रक्शन साइट हो, कहीं पे भी अगर आप चाहते हैं अपनी सिक्योरिटी देना करवाना तो आप इमीडिएट रिस्पॉन्स सर्विस से कराइए। कॉल कीजिए 6479870002 www.irfi.ca। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं सर?
अस्सलाम वालेकुम जी।
अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं सर?
अनवर बोल रहा हूँ जी। अनवर,
सॉरी हमजा।
अनवर, अनवर
जी। अनवर भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं
जी। अलहमदुलिल्लाह। आपने फरमाया अभी के जो लोग बात सुनना चाहते हैं मैं वो करूं तो फिर बात को कौमें आती हैं, वरना नहीं आती
जी।
ठीक है, ऐसी बात नहीं है।
ऐसे ऐसे
लोग सच सुनना चाहते हैं। सच क्या है इस वक्त
सर? इसका क्राइटेरिया कौन पूरा, आप बताएंगे मैं बताऊंगा, कौन बताएगा सच क्या है?
सच ये है कि क्या आर्मी ने ठीक किया?
सॉरी
बताएं, मुझे
दोबारा बोलिए।
ठीक है, पाक आर्मी हमारी है
जी।
ठीक है, उसका रेफर करते हैं
जी। सर क्या आर्मी ने इमरान खान को सेलेक्ट करके ठीक किया था? नहीं, क्या आर्मी ने इमरान खान को गवर्नमेंट में लाके ठीक किया था?
इमरान खान ने आने के बाद क्या चोरी थी, टाका डाला, मुल्क को नुकसान पहुंचाया?
नहीं, मैं तो सिर्फ इतनी सी, सर आपने मुझसे सवाल पूछा आर्मी ने ठीक किया, तो मैंने कहा क्या इमरान खान को लाने में आर्मी ने ठीक किया था?
क्या उन्होंने एक चांस देना था एक ईमानदार शख्स को, और उसने ईमानदारी साबित की अपनी?
तो फिर आर्मी कैसे अगेंस्ट हो गई सर? आर्मी कैसे अगेंस्ट हो गई? इनकी आवाज सही नहीं आ रही आपकी सर, आवाज थोड़ी सी कट रही है, मेरा ख्याल है आप शायद रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं। तो हम आपकी कॉल को सर एक मिनट, दूसरी भी कॉल है, हम उनकी कॉल सुनते हैं, आप दोबारा कॉल कर लेंगे हमें। थैंक यू सर।
अब आवाज आई?
हेलो,
अब आवाज आई?
जी जी आ रही, अब आ रही है, मुझे बोले जी जी।
अच्छा, आप ये देखिए कि मान लिया कि इमरान खान को आर्मी लाई
जी,
ठीक
सर, वो तो खुद भी मान चुके हैं ना, इंटरव्यू में कह चुके हैं।
पाकिस्तानियों को मायूस किया या नहीं किया?
सर किया, 3 साल तो किया, आखिरी साल में बेहतरी हो रही थी
जी?
3 साल मायूस हुए, लास्ट ईयर जब जाने का वक्त आया तो बेहतरी हो रही थी, अच्छा हो रहा था पाकिस्तान।
नहीं, 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 मायूस नहीं किया, ये आपका आपका ख्याल है, इसलिए मायूस नहीं किया कि उस गंद को साफ करने में 2 साल 2.5 साल जो लगे ना, उसने बहुत जल्दी गंद साफ कर दिया, कितने गंद करके गए थे ये लोग।
ठीक है सर,
समझे?
ठीक है,
ठीक है ना, ये आप जो बात इमरान खान की हिमायत में करेंगे तो वो सच्ची बातें हैं।
सर यही तो सारा मसला है, आई एम सॉरी आजम भाई, मसला सारा यही है कि हिमायत की जहां तक बात है ना, तो मैं पूरा हफ्ता रिव्यू करता हूं सारे चैनल का, मैं आपको वही वाली बात कर रहा हूं कि मैं ARY देखूंगा ना तो सब इमरान खान इमरान खान इमरान खान होता है, जब मैं जियो देखता हूं तो सारा नवाज शरीफ मतलब शरीफ फैमिली होता है, तो मैं खुद कंफ्यूज इस बात पर हो रहा हूं कि इतना हम लोगों में इतनी दूरियां या एक लाइन क्यों ड्रॉ हो गई है कि या तो इधर है या इधर है। अब वही वाली बात है ना, अगर वो अदलिया ने फैसला दिया कि डी सीट करें तो नवाज शरीफ फैमिली ने कहा कि अदलिया ने गलत फैसला किया, अदलिया का झुकाव इमरान खान की तरफ हो गया। अब अगर अदलिया ने फैसला किया कि जी इन पे आर्टिकल 609 की वो किए, वो कहते हैं कि जी अदलिया का झुकाव इनकी तरफ है, वो नवाज शरीफ के साथ हो गई। असल में तायुन ही नहीं हो पा रहा सच और झूठ का।
नहीं, आप देखिए मेरी बात सुनिए, डी सीट करने का फैसला गलत था या सही था?
सर मैं आपको एक मिनट रोकूंगा सर, 2 कॉलर और हैं, उनको भी साथ लेते हैं, फिर आपको दोबारा कनेक्ट, आप साथ ही रहिए, हम आपको दोबारा लेते हैं।
जवाब तो दिया ना
जी जी, एक मिनट रुके ना सर।
फैसला सही था
सर? सर सर अगर आप लॉ के मुताबिक पूछें तो आर्टिकल 6 जो आईन में लिखा हुआ है उस हिसाब से जो फैसला दिया बिल्कुल ठीक है, उन्होंने आईन शिकनी की थी, उन्हें उस वक्त ना बहस कराई उन्होंने, और ये मैं नहीं कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है, वो आपसे मुझसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और उन्हें पता है आईन के बारे में क्या है।
सुप्रीम कोर्ट जितने फैसले दे रही है वो सही दे रही है
सर? ये आईन के बारे में तो सही दे रही है, आईन की आईन शिकनी पे आर्टिकल 6 लगता है सर, ये बात तो सही है, आईन शिकनी पे तो लगता है। अल्ताफ हुसैन पे लगा जब किसी ने नहीं बोला, क्योंकि उसने सरेआम बोल दिया था पाकिस्तान मुर्दाबाद, उसमें भी तो लगा था आर्टिकल 6 जब कोई नहीं बोला।
देखिए یا اس کو عمران خان کو ڈی سی کا فیصلہ کرنے کا، یہ آئین شکریہ نہیں ہے؟
نہیں سر، اس کو ڈی سی دی گیا، وہ تو آئین کے مطابق اس کے ووٹ سر کم پڑ گئے. سر دیکھیں لا میں موجود ہے کہ اگر آپ کا آپ پرائم منسٹر کے اگینسٹ کوئی کاروائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے زیادہ ووٹ لے لیں، اس کو نکال دیں، سمپل. وہ ہو گیا تھا
پیسے دے کے ووٹ لینے
خریدنے سر، وہ الگ. سر عمران خان نے بھی پیسے دے کے یہ جو جہانگیر ترین صاحب نے جہازوں میں بٹھا کے ان کی گورنمنٹ بنوائی تھی، جب تو کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ پیسے دے کے سارے پی ٹی آئی میں شامل ہو کے گورنمنٹ بن گئے. سر
ووٹر کو نہیں خریدا،
انہوں نے ایم ایل اے کو نہیں خریدا. عمران نے ایک.
ہیلو، السلام علیکم.
جی جی سر، نام بتائیں گے اپنا سر؟
جی نام میرا بابر ہے.
جی بابر صاحب،
میں آپ کو ایک بات بتاؤں.
جی بابر،
جہلیت کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے، آپ کتنی دیر بھی لگے رہے.
کوئی بات نہیں سر، میں تو دیکھیں یہ پلیٹ فارم ہے، یا جس نے جو بات کر دی میں اس کو موقع دوں گا.
دیکھیں نا، ایک غلط بات کو آگے یہاں پہ ڈیفینڈ کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کا پہلا جلسہ لاہور میں کس نے کروایا تھا؟ کیا دنیا کو نہیں پتا؟
جی جی.
وہ کون بار بار کے لایا تھا لوگوں کو، اور کس نے پیسہ انویسٹ کیا تھا وہاں پہ؟ اور اس کے بعد ابھی کل کی بات ہے کہ لوگ پکڑے گئے ہیں افغان ریفیوجی.
جی وہ میں نے دیکھا.
یہ استعمال کر رہے ہیں پنجاب میں اور کراچی میں حالات خراب کرنے کے لیے عمران خان.
جی میں نے سنا ہے سر، کل کے بھی حالات تھوڑے سے باخبر ذرائع کے مطابق ہے، کل کے حالات تھوڑے سے کروشل ہوں گے پنجاب میں.
باقاعدہ ان لوگوں کے فوٹو دیے ہیں، باقاعدہ ان کے نام دیے ہیں، اور اس نے ان لوگوں کو ٹکٹ دیے ہیں جو حوانی ہیں، جن کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جعلی ان لوگوں نے اس وقت پاسپورٹ اور شادی کارڈ بنوا لیے ہوئے ہیں ضیاء الحق کے دور میں. تو اب میرا مطلب یہ ہے کہ
سر ہمارے پاس کال ایک اور ہے، آپ جلدی سے بولیے جو بولنا ہے آپ کے ویسے پلیٹ فارم میں. سر
میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ
ہیلو
ہو گیا ہے بس، اس کے پیچھے جو وہ غلطیاں اس نے کی ہیں یا جو وہ تو لیڈر ہے ہی.
آپ کی لائن شاید ڈراپ ہو گئی. السلام علیکم. جی
ہلو. جی السلام علیکم.
جی نام بتائیں.
جی کامران بات کر رہا ہوں.
جی کامران بھائی
دیکھیں، بات دراصل یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں اپنے ملک سے کوسوں دور بیٹھے.
جی بالکل.
اور دل خون کے آنسو روتا ہے جو حالات اس وقت
بے شک میں میں آپ کی بات سے بالکل
صفائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
پاکستان کے حق میں بہتر کرے
اور پاکستان کے حق میں بہتر کرے.
بے شک
آج جتنے بھی کال آئیں یا جتنے بھی شوز ہوتے ہیں
سر نہیں ہو رہا. سر اصل میں نا اتفاقی اتنی پیدا ہو گئی ہے. میں اپنے گھر کی بات بتاؤں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ مجھ سے وہ بحث کرتا ہے کہ کبھی کبھی صرف میں شکل دیکھ کے خاموش ہو جاتا ہوں. اس کو صرف سوشل میڈیا کا بخار چڑھا ہوا ہے. جو پی ٹی آئی اور عمران خان کے لوگ بول رہے ہیں وہ میرا بیٹا. تو میں بڑا شاکڈ ہوا ہے سوچ کر کہ گھر گھر میں لڑائی پیدا ہو گئی صرف ایک آدمی کی وجہ سے. اور آئی ایم سوری سر، میں یہ غلط ہوا ہے. اب میں خود اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھو فیکٹ اینڈ فیگرز. اچھا فیکٹ اینڈ فیگرز پہ کبھی کوئی بات نہیں کر رہا بچہ، وہ صرف وہ بات کر رہا ہے جو لکھ دی گئی ہے آ گئی ہے. پرسوں کی میں بات بتاؤں، میری ایک فرینڈ نے بہت اچھی ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بولا ارے سپریم کورٹ تو بکی ہوئی ہے. میں نے کہا یار آپ تو یوں اٹھاتے یوں ٹھک کر کے، جیسے عمران خان بولتا سب بکے ہوئے، آپ بھی بولتے تھے بکے ہوئے. ایسے تو نہیں ہوتا نا، آپ کسی ایک ادارے کو بول رہے ہیں بکا ہوا. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. حق میں فیصلہ دے دے تو صحیح ہے، حق میں فیصلہ نہیں دے تو بک جاتا ہے. یہ ایک غلط روش شروع ہو گئی ہے، بہت غلط ہو گئی ہے. چلے سر تھینک یو امار جی. آنند سنبھا میں
آخری جملہ یہ کہتا ہوں کہ جب تک سزائیں نہیں ملیں گی، میرا تعلق نہ عمران خان سے ہے نہ زرداری سے نہ نواز شریف سے.
جی جی.
جب تک اکیلیاں ہماری ٹائٹ ہو کے سزا نہیں دے گی، جب تک چوروں کے ہاتھ نہیں کٹیں گے.
بے شک.
جب تک
بے شک. بالکل صحیح آپ نے بولا کامران بھائی، تھینک یو مچ. ہمیں اسلامی قانون لانا چاہیے اور واقعی چوروں کے ہاتھ کٹنے چاہیے، اور جو غلط کام کرتا ہے اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے. جب تک سزائیں نہیں ملیں گی کوئی بھی سر میرا بیٹا کیوں نہ ہو،
چاہے اس میں جنرل کیوں نہ ہو، چاہے اس میں.
ہلو السلام علیکم.
السلام علیکم.
جی نام بتائیں گے اپنا سر.
ابرار بول رہا ہوں.
جی ٹھیک ٹھاک ٹھیک ٹھاک. بس
وہ ایک تو وہ آپ نے کہا تھا کہ وہ ڈی سیٹ کرنے کے لیے رات کو لگی تھی.
نہیں ڈی سیٹ کے لیے رات کو نہیں بولا تھا، وہ جو عمران خان کی عدم اعتماد کی تحریک تھی اس پہ میں نے کہا تھا کہ رات کو.
نہیں آپ نے کہا تھا وہ ڈی سیٹ کے لیے بھی تو
رات کو ہی انہوں نے وہاں عمران کسی انہوں نے کوئی پٹیشن داخل کی تھی جس کو رات کو فیصلہ انہوں نے دیا تھا سپریم کورٹ نے.
نہیں میرا نہیں خیال وہ، کیونکہ وہ ڈی سیٹ والا
کسی ایک کا دیا تھا سر. ڈی سیٹ کا تھا کچھ تھا جو عمران خان کے حق میں رات کو، جس پہ مریم نواز نے اگلے دن صبح کہا تھا اب رات کو عدالت کھلی ہے تو اس پہ آپ کیا کہیں گے. میں خیال وہ پنجاب کے لیے کچھ تھا، اسمبلی کے لیے کچھ تھا، ہائی کورٹ نے رات کو کھلی تھی. اتھر من اللہ صاحب تھے وہ کورٹ رات میں کھلی تھی.
جی کیونکہ وہ دو کورٹ رات کو کھلی تھی، اس کے بعد پھر اکثر وہ تھوڑا سا
رات کو کھولی تھی، اسی لیے کھولی تھی کیونکہ وہ فیصلہ ان کے حق میں آیا تھا.
دوسری آپ بات کرتے ہیں کہ وہ یہ क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का भी आप फैसला वो आर्टिकल 6 की बात कर रहे हो, एक जज का नोट था, तो उसको आप
इजाफी नोट सर उसे कहते हैं, और इजाफी नोट दिया इसलिए जाता है
मेन आपने डिस्कस
नहीं सर,
थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा होती है।
अच्छा ठीक है,
आर्टिकल
6 सर पूरा फैसला असल में 80 सफात पे था, और इत्तेफाक की बात है थोड़ा सा मैंने रीड किया था, पूरा ही किया था ऑलमोस्ट, लेकिन मैंने उसकी चंद चीजें निकाली थी जिसमें मैंने ये भी बताया था कि आर्टिकल 6 की वजूहत जो बयान की गई थी, आर्टिकल 6 तो बाद में उन्होंने इजाफी नोट दिया था, लेकिन जो वजूहत बयान की थी किस वजह से उन्हें साजिश नजर नहीं आती, वो भी सर मैंने पूरा कहा था कि पहले ये हुआ, फिर एक मिनट बाद ये हुआ, फिर तीन मिनट बाद ये हुआ, तो फिर इन चार लोगों के लिए इजाफी नोट दिया गया था कि अगर गवर्नमेंट चाहे या कोई चाहे तो इस पे इतलाक हो सकता है, इजाफी नोट था। बिल्कुल आपने सही कहा,
वो पांच में से एक जज का ये
जी
पांच इजाफी नोट था, तो
लेकिन सर पांचों जजों का ये था कि साजिश नहीं थी, ये तो मान लें
नहीं वो साजिश नहीं थी, तो फिर हम ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग जो थी कमेटी,
सर मेरे पास टाइम बहुत कम रह गया, सिर्फ 3 मिनट है, मेरे पास 4-5 कॉलर है, आई एम सो सॉरी, आप कोशिश कीजिए नेक्स्ट वीक में 4 बजे कॉल कर ले, मैं रेडी होंगे सर, आपसे पूरा आधा घंटा बात करूंगा, सॉरी माजर चाहूंगा मैं।
ओके थैंक यू,
आप अच्छी बहस कर रहे हैं, मैं भी आपको जवाब दे दूंगा, आप भी मुझे दीजिएगा, बड़ा मजा आएगा। थैंक यू सर, थैंक यू मच, ओके अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी।
अस्सलाम वालेकुम आसिम, मेरा भाई कैसे हो?
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए कैसे हैं भाईजान, ठीक ठाक हैं? नाम बताइए।
अल्लाह का शुक्र एहसान है यार। आसिम भाई मेरे दोस्त है, कजन है मेरा, उसकी बेटी का नाम मरियम है। अब लोग बार बार कहते हैं मरियम के पापा चोर है, वो बेचारा नाम चेंज करने का सोच रहा है, अब क्या करे
यार,
लोगों ने अपनी लड़की बच्चियों के नाम मरियम रखना छोड़ दिया भाई, बोल रहे यार वो लोग पीछे से आवाज रखना मरियम के पापा चोर है।
हाँ सही कह रहे हैं, देखिए अब आप सोचे हम कहाँ पहुँच गए कि हमें नाम चेंज करना, मतलब इससे ज्यादा हमारी कौम गिर नहीं सकती। और
अच्छा दूसरा मेरे भाई, वो साजिश नहीं थी, खारिश थी, वो चट्टी में हाथ डाला हुआ है ना, वो चट्टी में हाथ डाल के बोलते साजिश नहीं थी, खारिश थी है।
सर ये आपका अपना ओपिनियन है, साजिश को खारिश कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल मैं सिर्फ यही कहूंगा कि
यार आसिम भाई ये बताओ बेचारा क्या करे, उसकी बच्ची भी बड़ी हो रही है मरियम, अब क्या करे है? वो बेचारा नाम अब चेंज करने का सोच रहा है वो।
सर मैं इसके बारे में कोई वो नहीं कह कुछ नहीं सकता, वो नाम चेंज करे ना करे, लेकिन बहरहाल मैं सिर्फ एक दुआ जरूर करूंगा, हमारे पास टाइम
ज्यादा जलील हो रहा है, बोलता पीछे से आवाज आती है मरियम।
चले नहीं सर, इस तरह से शहबाज नाम भी चेंज हो जाएगा, नवाज भी चेंज हो जाएगा सर, फिर तो सारे चेंज हो जाएंगे नाम। चले थैंक यू अमर जी, बहुत बहुत शुक्रिया,
थैंक यू अमर, लाइटली मूड में यार आपको गुड बाय बोलने में भी टाइम खत्म,
हाँ टाइम खत्म, अच्छा थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अल्लाह ताला से दुआ है मेरी, और मैं तह दिल से ये बात दिल से कह रहा हूं, और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान की बात कर रहा हूं, उस पर भी अगर पीटीआई बोले कि मैं 22 तो होऊंगा, कि अगर इमरान खान इस मुल्क के लिए अच्छा है तो कल छोड़ आज वो आ जाए, हमें कोई गर्ज नहीं, हमें सिर्फ अपने मुल्क से गर्ज है, हमें सिर्फ अपने मुल्क के लोगों से गर्ज है, और अगर वो अच्छा नहीं है तो मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उसको जिंदगी में कभी पाकिस्तान का लीडर ना बनाए, अगर वो नहीं है अच्छा, और अगर है, क्योंकि सब अल्लाह जानता है आगे क्या होना है, कैसे होना है और क्यों होना है, तो मैं सिर्फ अल्लाह से दुआ करूंगा जो हमारे मुल्क के लिए अच्छा हो वो होना चाहिए, और पाकिस्तान एक हमारी आजाद रियासत है, और पाकिस्तान की जो आर्मी है उसको मैं सलूट करता हूं, सलूट करता रहूंगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो हमारे पास अभी 2 स्पॉन्सर्स और हैं जिनके बारे में कहूंगा, पिज्जा 786 मार्कम है, और मार्कम में अच्छा बेहतरीन हलाल पिज्जा है, अगर आप मार्कम में तो जाइए पिज्जा 786 खाइए, 9055547886। और थॉर्नक्लिफ में है अजवा पिज्जा, इनके पास बटर चिकन पिज्जा है और चिकन टिक्का पिज्जा है, और पिज्जा के अलावा इनके पास सैंडविचेस भी हैं, बर्गर भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो कॉल कीजिए अजवा पिज्जा पे 416-423-2792 पर, और हमारे पास यूनिफाई इमिग्रेशन, इमिग्रेशन से मुताल्लिक कोई भी सवाल आपके पास हो तो आप जरूर सवाल कीजिए असमा साबिर से, और कॉल कीजिए 6472175492 पर। उसके अलावा इमीडिएट रिस्पांस सर्विसेज जो कि सिक्योरिटी फराम करते हैं, और ये आज की नई टेक्नोलॉजी के साथ आपको सिक्योरिटी फराम करते हैं, और जब ये सिक्योरिटी फराम करते हैं तो 100% सिक्योर्ड होती है, तो कोई भी सिक्योरिटी के लिए अगर आपको चाहिए तो आप कॉल कीजिए 6479870002 www.irfi.ca पर, और अगर आपको जॉब चाहिए सिक्योरिटी गार्ड की तो भी आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपके पास अगर लाइसेंस नहीं है तो आपको लाइसेंस भी करवाएंगे और कम से कम आपसे पैसे चार्ज करेंगे, तो आप अपना शानदार मुस्तकबिल बनाने के लिए अभी कॉल कीजिए और ट्रेनिंग की डेट बुक कराइए 6479870002 www.rifi.ca پر اپنے مستقبل کو اپنے ہاتھ میں لیجئے, کمائیے کھائیے اور مزہ کیجئے, ویکینڈ انجوائے کیجئے, اور اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجئے. جب تک ہم آپ سے خدا حافظ کہیں گے اور اگلے ہفتے پھر ہم آئیں گے, پھر یہ پورا ہفتے کا ریویو لے کر آئیں گے, اور میں میری کسی بات سے یا میری کسی چیزوں سے کسی کو ہرٹ ہوا ہے یا کسی کو برا لگا ہے تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. پروگرام اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے, پھر دیکھیے گا ویکینڈ ود اسمبلی, اسپانسرڈ بائی ایمیڈیٹ ریسپانس سروس اینڈ وینٹیج ویڈیو پروڈکشن. اللہ حافظ, بائے بائے.